मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस के लिए जो मैंने विषय चुना है मुझे लगता है कि शायद आपको भी यह विषय पसंद आएगा क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध इस ऑडियो का जो टाइटल है उससे है और आप जानते हैं कि इस ऑडियो का टाइटल है ऑडियो फॉर एक्सीलेंस। मुझे लगा कि इस इश्यू पर भी हमें थोड़ा बात करना चाहिए कि ये जो एक्सीलेंस है ये एक्सीलेंस वास्तव में है क्या। हम लगातार बोलचाल की भाषा में एक्सीलेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम आउटस्टैंडिंग शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतया मैंने देखा है कि जब हम आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंस शब्द का प्रयोग करते हैं तो आम तौर पर लोगों के दिमाग में इसको लेकर के कुछ बड़ी बहुत बड़ी बात जैसी दिखाई देती है या यूं कह लीजिए कि उन्हें लगता है कि यह कोई बहुत अद्भुत चीज है या कोई आश्चर्यजनक चीज है, आश्चर्यजनक बात है। बहुतों को तो यह भी लगता है कि यह शायद कोई एक नैसर्गिक प्रतिभा ही होती है, नेचर से ही हमें एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग करने के गुण चरित्र बुद्धि मिलते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है। मित्रों इसी बात को सोचकर मैंने आज के अपने ऑडियो फॉर एक्सीलेंस का जो विषय रखा है वो है अचीविंग द एक्सीलेंस, यानी कि आप एक्सीलेंस कैसे हासिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह विषय आपको पसंद आया होगा और बिना आपकी अनुमति जाने हुए ही, हालांकि मैं आपकी अनुमति भी चाहूंगा, मैं अब इस विषय पर अपनी बात शुरुआत करता हूं, अपने बात की शुरुआत करता हूं। और मित्रों इसके लिए मैंने जो एक स्टाइल चुना है, जो एक तरीका चुना है, वो बहुत ही व्यावहारिक जीवन का तरीका चुना है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने इस ऑडियो में जिसके जो सैद्धांतिक पक्ष होते हैं, इसके जो एक फिलोसफिकल जो वे होता है, उनसे अपने आप को पूरी तरह से बचाऊं और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जो हम एक्सीलेंस के सूत्र निकाल सकते हैं या हंसी हंसी में खेल खेल में जो हम अपने आप को एक्सीलेंट बनाने के रास्ते ढूंढ सकते हैं, ढूंढे जाने चाहिए, जिसके लिए कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं, विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, मैं उन बातों को उन तरीकों को आपके सामने रखूं। तो फ्रेंड्स विषय है एक्सीलेंस, अचीविंग द एक्सीलेंस, एक्सीलेंस हासिल कैसे किया जाए। फ्रेंड्स सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और वो ये है कि जो एक्सीलेंस जो शब्द है, एक्सीलेंट जिसको हम कहते हैं, वह मूलतः कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं होती है। आश्चर्यजनक चीज तो बिल्कुल अलग ही होती है कि जो आप विश्वास नहीं कर सकते थे जब वह कुछ हो जाए तो आप उस पर आश्चर्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो एक्सीलेंस है उसका आश्चर्य से कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी, बहुत ही इसका सिंपल चरित्र है, बहुत ही सिंपल गुण है जिसे आप वर्च्यू कह सकते हैं। वो ये है कि जब कोई भी काम हम करते हैं और उस काम को जब हम उसके बेस्ट वे में कर लेते हैं, यानी कि वह काम जिस तरीके से किया जाना चाहिए और जो अच्छे से अच्छे रूप में वह काम हो सकता है जब हम वैसा कर लेते हैं तो कहा जाता है एक्सीलेंट। यानी कि यह जो एक्सीलेंट है इसका संबंध न तो किसी विलक्षण या अद्भुत प्रतिभा से है, पहली बात। दूसरा कोई जादूगरी से नहीं है कि आपको देखकर बिल्कुल आश्चर्य ही हो रहा है कि कोई व्यक्ति अगर हवा में उड़ रहा है तो आप देखेंगे और कहेंगे कि आश्चर्य है ये कैसे चल रहा है। किसी को हम जब अंगारों पर चलता हुआ देखते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि अरे बाप रे अंगारों पर कैसे चल रहा है। किसी को बिल्कुल बर्फ के पानी में जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में नहाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे कर रहा है, तो इस पर हम आश्चर्य करते हैं। याद रखिए हम उसे एक्सीलेंट नहीं कहते, राइट। एक्सीलेंट का बहुत ही सीधा सा अर्थ है और वो ये कि जब आप किसी भी सामान्य से सामान्य काम को, मैं सामान्य से सामान्य शब्द का इस्तेमाल जानबूझ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि फिर आपके दिमाग में कहीं यह ना आए कि एक्सीलेंट का संबंध किसी बड़े काम से ही होता है यानी कि जब हम बहुत बड़े काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तभी एक्सीलेंट होगा, अगर हम छोटे काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो वह एक्सीलेंट नहीं होगा। इस धारणा को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। एक्सीलेंट का संबंध काम की श्रेणियों से नहीं है, काम की गुणवत्ता से है, क्वालिटी ऑफ वर्क। जो भी काम आप कर रहे हैं, यदि मैं झाड़ू लगा रहा हूं और झाड़ू लगाने के काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं तो झाड़ू लगाने का मेरा यह काम एक्सीलेंट है। मित्रों, माइकल एंजेलो हुए हैं, माइकल एंजेलो ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब मैं किसी रास्ते से गुजरता हूं और मुझे लगता है कि रास्ता कितना साफ है तो मैं उसे याद करता हूं कि इस पर सुबह किसने झाड़ू लगाई थी और उसने कितना एक्सीलेंट काम किया है। ये उनका कहना था। पहली बात, दिमाग से इस तथ्य को बिल्कुल निकाल दीजिए कि एक्सीलेंट कुछ एक्सीलेंट करने के लिए आपको कोई बड़ा काम हाथ में लेना पड़ेगा। नो, नॉट एट ऑल। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में एक्सीलेंट की संभावना छुपी हुई है, ठीक उसी तरह से छुपी हुई है जैसे फूल में सुगंध छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती, उसे आप पकड़ भी नहीं सकते, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बस दैट्स ऑल। जैसे कहानियों में संवेदना छिपी होती है, कविताओं में संवेदना छिपी होती, सेंसिटिविटी छिपी होती है, वो होती वही है, बस आपको अपनी संवेदनाओं के साथ उसे मैच करना है और वही कविता और वही कहानी आपको एक्सीलेंट लगने लगती है। छोटे से छोटे काम में भी एक्सीलेंट की उतनी ही संभावना रहती है जितने की किसी बड़े से बड़े काम में होती है, जहां तक एक्सीलेंट का संबंध है। मित्रों, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी साधारण काम को असाधारण बना देना एक्सीलेंट है, किसी सामान्य को असामान्य बना देना एक्सीलेंट है। मुझे बहुत सिंपल सा जो अर्थ इसका दिखाई देता है वो ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उस काम में कितनी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, अगर आप वह कर लेते हैं तो दैट्स ऑल, वह एक्सीलेंट हो जाता है। मान लीजिए क्रिकेट खिलाड़ी है, अगर वह छक्का लगा देता है किसी बॉल पर तो एक्सीलेंट हमारे मुंह से निकलता है कि एक्सीलेंट, वो प्लेयर आउटस्टैंडिंग प्लेयर कहलाने लगता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट में हम लोगों के समय में अब तो मुझे नहीं मालूम, जो भी 75% से अधिक मार्क्स ले आता था उसको एक ग्रेड दिया जाता था आउटस्टैंडिंग, तो 75% मार्क्स लाना कोई असंभव चीज नहीं है, कोई जादू भी नहीं है, कोई आश्चर्यजनक भी नहीं है, केवल एक पैमाना है और वो पैमाना इस बात का है कि अगर आप 75% मार्क्स तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ाई की है उसे बहुत अच्छे तरीके से की है। एथलेटिशियंस होते हैं, वो क्या होता है, घूम घूम करके ऊपर से उछाल भरे और इसके बाद जमीन पर आकर के पैरों को रखते हैं, अगर उनके पैर डगमगाते नहीं है और जमीन पर बड़े ठोस तरीके से आकर के खड़े होते हैं तो हम कहते हैं एक्सीलेंट। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वो गोल करने की स्थिति में नहीं है लेकिन किसी तरह से अपने प्लेयर्स को छकाते हुए और वो गोल मार देता है, हमारे मुंह से निकलता है एक्सीलेंट, तो उसने कोई जादू नहीं किया है, उसने केवल अपने काम को करने में महारत हासिल कर ली है और उसी से उसे एक्सीलेंसी प्राप्त हो गई है। मित्रों, मैंने इसके बारे में थोड़े से विस्तार से आपसे इसलिए बात की है ताकि आप सबके मन में यदि कोई इस तरह कि गलतफहमी बैठी हुई है कि मेरे काम में एक्सीलेंस की तो गुंजाइश ही नहीं है तो आप उसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। चाहे कोई कितना भी, ये तो समाज है जिसने कामों का की श्रेणीबद्धता कर दी है, उसकी ऊंचाई निचाई निर्धारित कर दी है, जबकि मालूम है हम सब जानते हैं कि अगर छोटा से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी अपने काम को न करे तो बड़े काम करने वालों के सामने बहुत बड़े संकट पैदा हो जाएंगे। हर व्यक्ति के काम की अपनी वैल्यू है, जो किसी भी मायने में बड़े काम करने वाले व्यक्ति के काम के वैल्यू से कम नहीं होती है, लेकिन समाज होता है, उसकी अपनी श्रेणीबद्धताएं होती हैं, किसी काम को करने के लिए कितनी योग्यता की जरूरत होती है, उस काम को शुरुआत करने के लिए उसके आधार पर श्रेणीबद्धता की गई है और ये दुनिया पूरी दुनिया में है, उसी के आधार पर हमें रिमुनरेशन मिलता है, उसकी मजदूरी मिलती है, उसका वेतन मिलता है। लेकिन जहां तक मानवीय गरिमा का सवाल है उसको कामों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा है भी, जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है उसमें काम को व्यक्ति की गरिमा से भी जोड़ दिया गया है। लेकिन एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे ये चीजें टूट रही हैं, इसलिए मैंने थोड़े विस्तार से ये बात कही कि हम जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, मन में बिल्कुल कोई कुंठा न लाएं, कोई गलत फहमी न लाएं कि मेरे काम को करने में एक्सीलेंस की संभावना नहीं है, उसमें उतनी ही संभावनाएं मौजूद हैं जितनी कि किसी बड़े काम को करने में। तो मित्रों, अगर एक्सीलेंस के बारे में आप मेरे इस तथ्य से सहमत हैं, और मुझे लगता है कि इससे पहले कि आप मेरे इस तथ्य को आउटराइट रिजेक्ट करें, अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि नहीं नहीं मैं गलत कह रहा हूं, तो मेरा एक अर्ज आपसे है, मेरी एक अर्ज आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा ठहरिए, तुरंत रिजेक्ट मत करिए। बहुत अच्छे तरीके से सोचने विचारने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं, तो आपको बिल्कुल अधिकार है, मैं आपके इस अधिकार का सम्मान करता हूं, और आपसे अनुरोध फिर से करता हूं कि आप मुझे अपने विचार लिख करके भेजें। तो फिर एक्सीलेंस है क्या? तो यदि हो सकता है कि आपके वो विचार मेरे विचार से ज्यादा अधिक प्रभावशाली हो, तो मैं अपने विचार को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और इससे मैं लर्न कर सकूंगा, तो प्लीज डू दैट, बट डोंट रिजेक्ट आउटराइटली, मतलब बिल्कुल सुनते ही इसे रिजेक्ट न करें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक तरह से ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है, उसमें बहुत सी धारणाएं बनी हुई हैं, पहले से बैठी हुई हैं, और जब भी हम अपनी धारणाओं के विरुद्ध कोई चीज सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे आउटराइट रिजेक्ट कर देता है, बिल्कुल जैसे प्रतिक्रिया करता है उस पर सोचता नहीं है। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। अब मित्रों, मैं आता हूं इसके सेकेंड स्टेज पर, जो मैंने इस ऑडियो के शुरुआत में की थी, कि क्या इस एक्सीलेंस को हम खेल खेल में पा सकते हैं, रोजमर्रा जीवन की हमारी जो प्रणाली है क्या हम उससे हासिल कर सकते हैं, या क्या इसके लिए हमें बहुत स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत है, क्या बहुत अधिक ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, या इनफैक्ट ये है क्या? दोस्तों, इस बारे में मैं अपनी बात की शुरुआत इस तथ्य से करना चाहूंगा, और वो ये कि जो एक्सीलेंस है, एक लिमिट तक ही इसका संबंध बुद्धि से है, एक लिमिट तक इसका संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि कहने का मतलब फिर मेरा कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी और हायर लेवल की एजुकेशन से नहीं है, मैं जिस बुद्धि की बात कर रहा हूं वो एक कॉमन सेंस भी उसमें उतना ही रोल प्ले करता है जितने कि आपके एकेडमिक एजुकेशन, कॉमन सेंस भी अपने आप में बुद्धि है, और मैं नहीं समझता कि किसी भी मायने में ये जो कॉमन सेंस है ये हमारी जो इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है उससे कम होती है, बल्कि रियल इंटेलेक्चुअलिटी तो सच पूछे तो कॉमन सेंस में ही होती है। बुद्धि सच पूछे तो हमारे जीवन में एक सीमा तक हमें पहुंचाने के बाद उसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं रह जाती है, उसका रोल खत्म हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लीजिए कि हम बास्केटबॉल के लिए आप किसी टीम का चयन कर रहे हैं, तो बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी की लंबाई होनी चाहिए, राइट, एक खिलाड़ी की लंबाई है, ठीक है, 6 फीट हम मान करके चलते हैं कि उसकी एक आदर्श लंबाई हो, कि अगर खिलाड़ी की लंबाई 6 फीट है तो वो बास्केटबॉल के लिए सफिशियंट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिस खिलाड़ी की लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो उतना एक्सीलेंट खिलाड़ी होगा बास्केटबॉल का। 6 फीट तक एक औसत, एक एवरेज या एक्सपेक्टेड हाइट है, उसके बाद चाहे 6 फीट 1 इंच हो, 6 फीट 2 इंच हो, 6 फीट 3 इंच हो, उसका फिर रोल बहुत ज्यादा नहीं रह जाता। फिर तो एक्सीलेंस आपके अपनी दूसरी चीजों पर निर्भर करता है, ये नहीं कि 6 फीट अगर 3 इंच के आप हो गए तो आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन ही जाएंगे। मित्रों, बुद्धि का रोल केवल इतना ही है, एक लिमिट के बाद जो IQ है, जिसे हम इंटेलिजेंस कोहेरेंस कहते हैं, उसका रोल नहीं रह जाता। इनफैक्ट सच पूछिए तो ये जो एक्सीलेंस है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जीवन के रोजाना के काम के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, बेसिकली इसका संबंध एनालिटिकल माइंड से नहीं है, मेमोरी से भी नहीं है, ज्ञान से भी नहीं है, सूचनाओं से भी नहीं है। इसका जो संबंध है मित्रों, वो इनफैक्ट सच पूछिए तो क्रिएटिविटी से है, कि आपका जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, वो किसी चीज के बारे में कितने रचनात्मक तरीके से सोच सकता है, दैट इज द बेसिकली एक्सीलेंस. रचनात्मकता ही एक्सीलेंस है. और मैं जब रचनात्मकता की बात कह रहा हूं तो उसे आप सामान्य तौर के रचनात्मकता के रूप में न लेके आप कविता लिखेंगे तभी आप रचेंगे. नो, ऐसा नहीं है. रचनात्मकता का मेरा सिंपल सा मतलब है कंट्रीब्यूशन. व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन द फील्ड ऑफ योर ओन. कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, उस क्षेत्र में मेरा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है. मैं काम तो कर रहा हूं, हर कोई काम कर रहा है. एक मजदूर खेत में मजदूरी कर रहा है, किसान अनाज उगा रहा है, नौकरी करने वाला नौकरी कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है. हम सब अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं. काम कर रहे हैं, उसके बदले में हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हमें वेतन मिल रहा है और उससे हमारा जीवन भी चल रहा है. और इस तरीके से हम अपने जीवन को पूरा भी कर लेंगे. और सच पूछिए तो उस हमें अपने काम को लेकर के कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है, अपनी उपलब्धियों के प्रति कोई असंतोष भी नहीं है और हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं. एक आदर्श स्थिति है. लेकिन आदर्श स्थिति का मतलब यह नहीं कि एक्सीलेंस भी है. एक्सीलेंस को अगर हम रचनात्मकता से जोड़ेंगे तो वहां जाकर के ये चीज जुड़ जाती है कि मैंने उस फील्ड में कंट्रीब्यूट क्या किया है. यदि मैं मजदूरी कर रहा हूं तो क्या मैंने मजदूरी करने के दौरान उसमें कुछ नया इन्वेंट किया, कोई और कंट्रीब्यूशन मेरा है उस क्षेत्र में. जैसे मान लीजिए कि मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं, रोजमर्रा के जीवन में मान लीजिए कि हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, जो भी है, महिलाएं हैं घर में, किचन में रोज भोजन बनाती हैं. ठीक है, भोजन बनाने की कला उनको परंपरागत रूप से मिली. हालांकि ठीक है, अब बहुत से सिखाने वाले भी मिल गए हैं और सिखाए जाते, लेकिन आप देखें कि वो कला लगातार उन्हें परंपरागत रूप से मिलती रहती है. जो सास होती है अपनी बहू को सिखा देती है तो उस घर का भोजन वो उसी तरीके से बनाना सीख जाती हैं. और बहू जब सीख जाती हैं तो बहू जब खुद मां बनती हैं तो फिर वो अपनी बेटियों को सिखाने लगती हैं. और भोजन बनाने की वो एक परंपरा, वो स्वाद उस घर का लगातार बना रहता है और वो चलता रहता है. राइट, तो एक महिला किचन में रोज भोजन बना रही है और एक समय पर आने के बाद उस भोजन बनाने की कला में उतनी सिद्धस्त हो जाती हैं कि उसी तरीके से वो भोजन बनने लगता है. तो ये वो अपना काम कर रही है और भोजन अच्छा बन रहा है, घर वालों को पसंद भी आ रहा है, लोग सराहते भी हैं, कोई शिकायत नहीं है. तो यह एक आदर्शतम स्थिति हुई, एक आइडियल सिचुएशन है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है. अब एक्सीलेंस क्या होगा? एक्सीलेंस होगा कि उस भोजन बनाने के तौर तरीकों में, स्वाद में या क्वालिटी में, या कह लीजिए कि मान लीजिए 10 तरह के भोजन बन रहे हैं तो 11वां भोजन तैयार करने में आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या रहा है. आपने क्या उनमें बदलाव किया, बदलाव नहीं किया तो क्या नया किया. अब ये जो बदलाव होंगे और ये जो नयापन होगा ये बेहतरी की तरफ होगा. ये नहीं कि हम जो कुछ भी अभी आदर्श स्थिति है, जो बेहतर स्थिति है, उससे हम डाउन हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर उसमें होगा कि हमने अपनी तरफ से क्या नया इन्वेंट किया. लेकिन यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल अखबारों में, मैगजीन्स में, चैनल्स पर भी और यूट्यूब पर भी दुनिया भर के रेसिपी अवेलेबल्स हैं. चलिए उस रेसिपी को लेकर के अगर वो कुछ एक नई डिश, मतलब उस रेसिपी के आधार पर एक डिश तैयार करके अपने किचन में ऐड कर लेती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि एक नई चीज ऐड हो गई. भले ही उसका फार्मूला उन्होंने किसी दूसरे से ही क्यों न लिया हो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो हुई कि एक नई चीज ऐड की जाए. लेकिन उससे भी बेहतर स्थिति तब होगी जब अपनी तरफ से ही सोच करके कोई रेसिपी ही तैयार कर ली जाए. क्यों नहीं तैयार की जा सकती? मान लीजिए कि एक उदाहरण लें कि आप खीर बनती है तो चावल की भी खीर बनती है, सेवई की भी खीर बनती है, तो और प्रयोग क्यों नहीं किए जा सकते? कद्दू की खीर क्या बनाई जा सकती है? क्या लौकी की भी खीर बनाई जा सकती है? क्या आलू की भी खीर मतलब मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम कि खीर कैसे बनती है, सच पूछिए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं केवल एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए जा सकते. इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी तो किए जा सकते. चावल और सेवई दोनों को मिलाकर के खीर बना करके देखी जाए. एक उदाहरण के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं कि हम क्या नए प्रयोग करते हैं, नए तरीके से चीजों को सोचते हैं, ये हमें फिर एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है. मित्र, जैसे पढ़ाई की बात है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो हम रट रहे हैं चीजों को, हम याद कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में कंटेंट के रूप में मौजूद है, जिसे मैं इंफॉर्मेशन कहता हूं, सूचना के रूप में मौजूद है। सवाल यह है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, मैंने जो कुछ भी ज्ञान हासिल किया है, अब मैं अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा हूं। वो जो तरीका होगा वो मुझे एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगा। जैसे मैं बहुत से देखता हूं कि जब लड़कियों के बारे में बात होती है तो कहते हैं कि हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, क्या घर में रहने के लिए हमने एमए किया है, हम नौकरी करेंगे। मुझे लगता है कि ये सोचने का, नौकरी करना आवश्यक है, बिल्कुल कीजिए, एक सोशल रोल होना चाहिए, आप अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर बाय द वे किसी को ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है तो हमारा ये जो ज्ञान है, ये जो पढ़ाई है, इसका उपयोग घर में करने की बहुत संभावनाएं होती हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे घर की संरचना को बदल सकती है, बदलती ही है। कहा ही जाता है कि जो संस्कृति का जो ट्रांसफॉर्म जो अभी तक बनी हुई है वो महिलाओं की वजह से ही बनी हुई है। अगर किसी को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं तो निराश हताश होने की बात नहीं है, उनके सामने दूसरी बहुत सी संभावनाएं हैं अपने उस ज्ञान के आधार पर अपने पूरे पारिवारिक संरचना को एक्सीलेंस बनाने की। तो मैं माफी चाहूंगा कि मुझे आप नौकरी, मतलब महिलाएं इसका विरोधी न माने कि मैं उनके नौकरी किए जाने का विरोधी हूं, नॉट एट ऑल। मैं तो केवल ज्ञान के प्रयोग के एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति है और दुकान कर रहा है, अब उसको लगेगा कि दुकान में मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई रोल नहीं है, खेती ही कर रहा है उसको लगेगा कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट रोल तो नहीं है क्योंकि फिर हिस्ट्री का उपयोग आप दुकान में बैठ करके नहीं कर सकते, लेकिन जो उस ज्ञान ने आपके दिमाग को जो उपजाऊ बनाया है, एक उसकी जो फर्टिलिटी को बढ़ाई है, तो उसमें उपजने दीजिए ना, उपजने दीजिए, देखिए कि आप इस बिजनेस को कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसमें क्या नया ऐड कर सकते हैं, क्या नए तौर तरीके बिजनेस के लिए निकल रहे हैं, क्या कुछ नई रिक्वायरमेंट है, कैसे आप ग्राहकों से अलग तरीके से पेश आएंगे, आप कैसे अपने दुकान को नया लुक देंगे, इस तरह इन इश्यूज पर आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, और सोचने के बाद आप उसी को एक्सीलेंट बना सकते हैं। तो मित्रों, मैं केवल यह बात कहना चाह रहा हूं कि जो एक्सीलेंस है वो काम को बेहतर तरीके से करने की गुंजाइश होती है और संभावना होती है, और ये इस जो संभावना का संबंध है बुद्धि से इतना नहीं होता जितना कि बुद्धि के रचनात्मक उपयोग से होता है। और जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ बुद्धि का रोल नहीं होता, आप जानते हैं, उसमें कल्पना का रोल होता है, उसमें भावना का भी रोल होता है, उसमें दूरदर्शिता का भी रोल होता है। तो ढेर सारी चीजें मिलकर के, हमारे दिमाग के ढेर सारे तत्व मिलकर के हमें क्रिएटिव बनाते हैं, रचनात्मक बनाते हैं। मित्रों, फिर हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? एक सच बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक्सीलेंस को हासिल करना कोई बहुत कोई अद्भुत चीज नहीं है, कोई विलक्षण चीज नहीं है, लेकिन इस मायने में यह विलक्षण जरूर बन गई क्योंकि इसको बहुत थोड़े से लोग समझ पाते हैं, और जो थोड़े से लोग समझ पाते हैं वो उसके एक्शन में आ जाते हैं और वो उस एक्सीलेंस को हासिल कर लेते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी बहुत बड़े हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की जरूरत है, कोई किसी बहुत बड़े गुरु की जरूरत है, किसी बहुत बड़े ग्रंथ की जरूरत है, या किसी बहुत बड़े आशीर्वाद की जरूरत है, नॉट एट ऑल। ये साइंस है और लाइफ का बहुत ही एक तरह से करके प्रैक्टिकल साइंस है एक्सीलेंस को हासिल करना। मैं अब इस बारे में आपको अभी अभी जो मेरे कुछ अनुभव रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और ये जो अभी अभी जो मैंने कहा है मित्रों, ये समझ लीजिए कि अप्रैल 2015 के मिड का मेरा अनुभव है, अप्रैल मध्य का वर्ष 2015 का। और मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं, जब मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति हम लोग कश्मीर की यात्रा पर गए थे। चूंकि अभी मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे अभी यही घटना ताजी याद आ रही है, तो मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मित्रों, जब हम लोग श्रीनगर से पहलगांव जा रहे थे तो लगभग 50-60 किलोमीटर जाने के बाद एक जगह पर हमारी बस रुकी चाय वगैरह के लिए, और बड़ी खूबसूरत जगह थी और बड़ा अच्छा स्थान था, और भजिए निकल रहे थे, चाय बन रही थी, और उसके सामने ही दुकान वाला बैठा था, और सबसे बड़ी बात है कि उस दुकान के सामने सेव के बाग फैले हुए थे, सेव के बाग। और मजेदार बात है कि वो सेव के बाग फूलों से लदे हुए थे। अब अप्रैल मध्य तक सेव के जो पेड़ होते हैं वो फूलों से लद जाते हैं, और ऐसे लग रहे थे फूल जैसे कि पूरे के वो पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो कि इन पेड़ों ने अपने शरीर के एक एक रोए में सफेद रंग के मोती पिरो रखे हो, इतने खूबसूरत लग रहे थे। इससे खूबसूरत जगह और क्या हो सकती थी। मैं बिल्कुल सम्मोहित था उन बागों को देखकर, सेव के बागों को देखकर। तो मित्रों, जब मैं टोकन लेने गया चाय और भजिया के लिए, तो मैंने उस टोकन देने वाले से पूछा, उस लड़के की उम्र लगभग 31 साल की होगी, वो यूपी से आया हुआ था, उसकी भाषा से लगा, मैंने पूछा तो पता भी लगा कि वो यूपी से आया हुआ लड़का है। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो सेव के जो बाग हैं, ये जो पेड़ है, एक पेड़ में कितने सेव निकल जाते होंगे, साल भर में कितना उत्पादन हो जाता होगा, एक पेड़ कितना सेव दे देता होगा। तो उसने बहुत सोचने समझने के बाद कहा कि लगभग 500-600 किलो सेव। मैंने कहा एक पेड़ से 500-600 किलो सेव, क्या सच में इतने हो जाते हैं? उसने कहा कि हाँ सर, बिल्कुल हो जाते हैं। और इसके जो एक एक फल होते हैं, वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने बड़े बड़े होते हैं। एक एक सेव इसके 3-3 किलो के होते हैं। लेकिन मैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सेव तो हम लोग भी खाते हैं और बाजार में भी गए हैं, मुझे 3 किलो का तो कोई सेव नहीं दिखा है। हाँ, 250-300 ग्राम तक के सेव मैंने देखे हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा किलो का कोई सेव हो जाता होगा। लेकिन 3-3.5 किलो का सेव तो सेव न हुआ बल्कि कद्दू हो गया, वो तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है कि इतना होता होगा। इसके बाद जो हमारे बस का ड्राइवर था वहीं पर दिखाई दे गया, मैंने उसको बुलाया कि मैंने कहा भाई साहब, आप जरा सा बताइए कि इसमें कितने सेव हो जाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें जो है ना, समझ लीजिए कि लगभग 8 से लेकर 15 पेटी तक के सेव निकलते एक पेड़ में। तो मैंने कहा कि एक पेटी में कितने किलो होते हैं वो बताई। तो उन्होंने कहा 5 से 6 किलो की पेटी होती है, तो उसका मतलब अनुमान था कि 50-60 किलो सेव एक पेड़ में निकल जाते हैं। अब इसमें एक्सीलेंस की केवल आप दो चीजें देखिए मित्रों, की एक व्यक्ति कह रहा है कि 50-60 किलो निकलते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो लगभग 10 साल से सेव के बाग के सामने है, वो कह रहा है कि 500-600 किलो निकलते हैं। जो फर्क है वो 10 गुने का फर्क है। लेकिन मुझे समझने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो एक फल 3-3.5 किलो का बता रहा है, जबकि एक फल बड़ा से बड़ा होगा तो 300-350 ग्राम का होगा, तो वो फल का वजन भी 10 गुना बता रहा है। एक फल का वजन 10 गुना बता रहा है, तो टोटल एक पेड़ में निकलने वाले सेव का वजन 10 गुना हो जाएगा। मतलब उसे एक छोटी सी जानकारी, जो रोज वो हर साल उस पेड़ से सेव टूटते हुए देख रहा है, उसके पास परफेक्ट जानकारी नहीं है। पहली बात मित्रों। दूसरी बात मैं आपको एक्सीलेंस की बताता हूं, और ये मुझे लगता है कि शायद ज्यादा व्यावहारिक उदाहरण है, और वो ये कि मैंने करीब 10 लोगों से मैंने पूछा, आप शायद मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप मेरी इस बात पर विश्वास करें। मैंने 10 लोगों से ये जानने की कोशिश की कि कश्मीर में यदि कोई एक एकड़ सेव का बाग खरीदना चाहे तो उसकी कीमत क्या होगी। मित्रों, आप यकीन करेंगे कि 10 लोगों से, 10 एग्जैक्ट नहीं, 8 या 10 कह लीजिए, लोगों से मैंने ये प्रश्न किया होगा, और सभी का उत्तर ये होता था कि कश्मीर में कोई सेव के बाग खरीद ही नहीं सकता। ये सबके उत्तर है, सबके उत्तर यही है। फिर मैं उनसे कहता था कि भाई ठीक है, मुझे भी मालूम है कि कश्मीर में स्टेट से बाहर का कोई नागरिक यहां जमीन नहीं खरीद सकता, और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा है। लेकिन मान लीजिए कि मैं कश्मीर का ही रहने वाला हूं और मेरे पास 3 एकड़ सेव के 3 एकड़ के बाग हैं, और मैं इसको बेच करके अब फॉरेन जाना चाहता हूं, या दूसरे राज्य में जाना चाहता हूं, या अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं, या कुछ भी अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे अपने बाग बेचने हैं। तो आखिर में कश्मीर का कोई नागरिक तो उसे खरीद सकता है। बोले हां, उसे तो खरीद सकता है, तो वो कितने का होगा। मित्रों, कोई भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, और वो लोग थे जो कश्मीर में ही रह रहे थे, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब आप इसमें एक्सीलेंस का तथ्य देखिए, वो ये है कि जैसे ही मैं उनसे सेव के बाग के रेट पूछता था, सभी उत्तर मुझे ये देते थे कि यहां कोई खरीद ही नहीं सकता। मित्रों, आप ये बताइए कि मेरा प्रश्न क्या था। मेरा प्रश्न था कि सेव के बाग के प्रति एकड़ कीमत कितनी है, क्या उसका उत्तर यह होगा कि कोई खरीद ही नहीं सकता। लेकिन जो बता रहा है, याद रखिए, वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है, उसको जरा भी इस बात का इल्म नहीं है, भान नहीं है कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि जब मैं उससे दोबारा पूछता था तो उसको लगता था कि मैं क्या बेवकूफी वाला प्रश्न फिर से पूछ रहा हूं, जबकि उत्तर तो दिया जा चुका है। वो इस तरीके से मेरे चेहरे को देखते थे। मैंने उससे ये प्रश्न तो नहीं किया है कि यहां सेव के बगीचे बाग खरीदे जा सकते हैं या नहीं खरीदे जा सकते हैं, मैं तो रेट पूछ रहा हूं। मित्रों, एक्सीलेंस में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो ये होती है कि अपनी अज्ञानता का बोध न होना सबसे बड़ी बाधा होती है। उनको इस बात का बोध ही नहीं है, इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमें इसका नॉलेज, इसकी नॉलेज नहीं है। अदरवाइज जो साफ साफ कह सकते थे कि हमें मालूम नहीं है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं हमें मालूम है, और मालूम होने के पर जो उत्तर देते हैं वो ये है कि इसे कोई खरीद नहीं सकता है। मित्रों, अब आप बताइए कि अगर हम अपने आसपास के वातावरण से इतने अधिक अपरिचित हैं तो आपको लगता है कि एक्सीलेंस हमारी प्रतीक्षा करेगा, हमारे पास जबरदस्ती आएगा? अब क्या हुआ, फिर मैंने अपने बस के ड्राइवर से पूछा, वो भी जवाब नहीं दे सके, जबकि बहुत स्मार्ट लड़का था और वो उसकी जो एज होगी 33-34 साल की एज थी और एज है थी, और बहुत स्मार्ट और बातचीत करने में बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छा, वो टूर गाइड के रूप में भी वो काम कर रहा था, और कुछ ही दिनों के बाद वो दुबई जाने वाला था, सऊदी जाने वाला था काम के लिए, वो भी डेट नहीं बता सका। फिर मैंने कहा उससे पूछा कि अच्छा बताओ कि कौन बता सकते हैं इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जफर भाई बता सकते हैं। जफर भाई का नाम उन्होंने इसलिए कि जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे वो जफर भाई उसके मालिक थे। जब रात को हम लोग लौटे तो फिर जफर भाई से मैंने मुलाकात की, बहुत स्मार्ट, फर्स्ट क्लास, मतलब इतनी अधिक तहजीब वाले इंसान, इतने अधिक, इतना अच्छा व्यवहार, इतने अच्छे मैनर्स, इतनी अच्छी भाषा, चाहे उनसे आप हिंदी में बात कीजिए, चाहे आप इंग्लिश में बात कीजिए, चाहे आप उर्दू में बात कीजिए, अद्भुत व्यक्ति। मैंने जब उनसे पूछा तो मैंने पूछा एक, और उन्होंने डिटेल में सारी चीजें बता दी, इस तरह के सेव के बाग की कीमत इतनी होगी, इस तरह के बाग की कीमत होगी, ये बाग इस एरिया में मिलेंगे, ये बाग इस एरिया में मिलेंगे, उन्होंने डिटेल्स में बता दी। चलिए, मेरी ये समस्या सुलझ गई। दोस्तों, जब मैं भोपाल लौटा तो मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर जफर का नाम क्या होता है, जफर नाम का अर्थ क्या होता है, ये मैं देखूं। तो मैंने जब हिंदी उर्दू डिक्शनरी में जफर का अर्थ देखा तो उसका नाम था विजेता, विजयी, जो जीतता हो, विक्टोरियस, और डेफिनेटली नाम के अनुकूल ही होते, ऐसे व्यक्ति तो विजेता होंगे ही होंगे। और फिर हम लोग जहां भी गए, हम वहां ही हमने देखा कि अकबर, उनके होटल का, होटल की जो सीरीज थी वो अकबर होटल के नाम से थी, जगह जगह उनके होटल खुले हुए थे और बहुत ही फर्स्ट क्लास होटल थे, अच्छे होटल थे, वहां अच्छी आपकी खिदमत होती थी, अच्छी व्यवस्थाएं होती थी। तो ऐसे व्यक्ति को तो विजेता बनना ही था, और वो विजेता हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने समय के प्रति सतर्क हैं, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क हैं, उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध है, अपनी कमी का भान है। और जब हमें अपनी कमी का भान होता है, अपनी अज्ञानता का बोध होता है, तो नेक्स्ट स्टेज होता है कि हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उस पूरा करने की प्रोसेस में धीरे धीरे हम ऑलरेडी एक्सीलेंट होते चले जाते हैं। तो मित्रों, ये एक्सीलेंस को मैंने थोड़े से उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, कैसे हम अपने अंदर इस एक्सीलेंस को ला सकते हैं, इसकी एक साइंटिफिक प्रोसेस क्या होती है, या प्रैक्टिकल प्रोसेस कह लीजिए, साइंटिफिक प्रोसेस नहीं, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या उपाय अपने अपनाने चाहिए, इसकी चर्चा मैं अब इसके सेकेंड पार्ट में करूंगा, तब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मैं चाहूंगा कि एक्सीलेंस का यह जो फर्स्ट पार्ट है आपको कैसा लगा, इसके बारे में यदि आप मुझे अपने फीडबैक से अवगत करा सकेंगे तो डेफिनेटली फिर इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसे मैं आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके सजेशंस के हिसाब से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।